आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। नए रीडर्स का दिल से स्वागत है। अब आगे की कहानी। पुलिस ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, मैं मिसेज अनीता धर्मपाल राजवंश को गिरफ्तार कर रहा हूं। अब जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी, यहां हम कोई बहस नहीं कर सकते। अनीता जी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं, मैं मिसेज अनीता धर्मपाल राजवंश हूं। मेरे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, आप चाहे जो भी हों, कानून के सामने सभी समान होते हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तुम नीचे बैठो, मैं अभी आती हूं, मुझे अपनी दवाइयां लेनी है, मेरे लिए वो दवाइयां लेना बहुत जरूरी है, अनीता जी ने संयमित स्वर में कहा। ठीक है, आप कमरे से अपनी दवा ले आइए, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूं, पुलिस ऑफिसर ने कहा। पुलिस ऑफिसर को वहां बैठे बैठे आधा घंटा हो गया था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी निशा उठी और बोली, मैं मॉम को देखकर आती हूं। कुछ देर बाद ही एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी लोग तुरंत ऊपर की ओर भागे। अंदर जाकर देखा तो अनीता जी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर नीला पड़ चुका था। शायद उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो, कोई ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालो, आदित्य ने घबराते हुए कहा। अब कोई फायदा नहीं है, पुलिस ऑफिसर ने धीरे से कहा, मिसेज राजवंश की मृत्यु हो चुकी है। धर्मपाल जी अनीता जी को इस हाल में देख वहीं चेयर पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। निशा फूट फूट कर रो रही थी। माना और मेहर उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य पास आया और बोला, डैड आप ठीक है ना? पहले आराध्या मुझे छोड़कर चली गई, अब ये भी चली गई, मैं फिर अकेला रह गया। धर्मपाल जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। डैड प्लीज, आपको रोना नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा, लेकिन अगर इसे जाना ही था तो जाते जाते मेरे दिल में इतनी नफरत क्यों भर गई इसके लिए? इसने मेरे बच्चों के साथ ये सब क्यों किया? अगर इसे मेहर पसंद नहीं थी तो एक बार मुझसे कह देती, मैं खुद मना कर देता निशा और मेहर की शादी के लिए। कम से कम मेरे बच्चों को इतना नहीं सहना पड़ता। आज मुझे ये भी पता चला कि आराध्या की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि जहर देकर मारी गई थी। किसने जहर दिया ये सच में आप जान पाया, मगर फिर भी मैं इससे नफरत नहीं कर पा रहा हूं। उनके स्वर में एक टूटे हुए इंसान की पीड़ा थी। चलिए डैड, आप चलिए अपने कमरे में, आदित्य उन्हें सहारा देकर कमरे में ले गया। मनाल और मेहर निशा को वहां से बाहर ले गए। अचानक ही पूरे घर का माहौल बदल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अनीता जी ने ऐसा क्यों किया, मगर अब उनकी कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद अनीता जी के अंतिम संस्कार भी हो गए। धर्मपाल जी धीरे धीरे सामान्य होने लगे, मगर उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। आदित्य और अधिराज कई बार कहते, डैड कभी कभी ऑफिस आ जाया कीजिए, मगर वो हर बार मना कर देते। नैना के पिता मनोहर लाल का नाम भी अब सामने आ चुका था। जांच में पता चला कि वो भी अनीता जी की साजिश में शामिल थे। अब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके थे, इसलिए मनोहर लाल को भी सजा हो गई। नैना का नाम किसी भी चीज में नहीं आया, वो निर्दोष साबित हुई। अब आदित्य और अधिराज दोनों भाई अपने परिवारों के साथ एक ही छत के नीचे रहने लगे थे। अधिराज को अपनी मां के कृत्य का बहुत पछतावा था, मगर आदित्य ने उसे समझाया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, अपनी मां को उनके किए की सजा मिल चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। धर्मपाल जी अपने बेटों की एकता देख दिल से संतुष्ट थे। अब निशा की जिंदगी फिजी में। निशा अब मेहर के साथ फिजी में बस चुकी थी। उसकी जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। उसे उसका पहला प्यार मेहर मिल गया था। कुछ साल बाद निशा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया निशान। उसका नाम उसकी मां के नाम से मेल खाता था, मगर चेहरा, स्वभाव और दिमाग सब अपने पापा जैसा। वो छुट्टियों में अक्सर इंडिया आता रहता था, अपने नाना नानी, मामा और बाकी परिवार से मिलने। अब सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, मगर दिलों में जुड़ाव बना रहा। बीती बातें पीछे रह गई थी और अब एक नई सुबह सबका इंतजार कर रही थी। प्लीज मेरी इस सीरीज पर कमेंट करें और साथ में रेटिंग देना ना भूलें। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो मैं अगली जेनरेशन की कहानी भी शुरू करने में मदद कर सकती हूँ, जिसमें निशान, मनाल और मेहर की बेटियां और नई पीढ़ी के रिश्ते, संघर्ष और रोमांस दिखाया जाएगा।